एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने ना सिर्फ हमें ब्रह्मांड के आश्चर्यों से रूबरू कराया बल्कि हमें खुद को समझने का एक नया नजरिया भी दिया।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं कार्ल सैगन की कालजयी कृति कॉस्मोस की। ये सिर्फ तारों और ग्रहों की कहानी नहीं है,
हाँ,
यह हमारी अपनी कहानी है। इस विशाल ब्रह्मांड में हम कहाँ से आए, हम क्या हैं और हमारी मंजिल क्या हो सकती है।
और आज के इस दौर में जब रोजमर्रा की भागदौड़ और छोटी छोटी बातों में हम अक्सर उलझ जाते हैं, मुझे लगता है सैगन का ये कॉस्मिक दृष्टिकोण ब्रह्मांड के पैमाने पर सोचने का नजरिया और भी जरूरी हो गया है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी चिंताएं कितनी छोटी हैं और हम सब एक नाजुक नीले गोले पर सवार यात्री हैं।
सही कहा, यह हमें बड़ा सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कार्ल सैगन हमें अपनी इस किताब के जरिए कहाँ ले जाते हैं।
हाँ,
लेकिन पहले उस शख्स के बारे में थोड़ी बात करते हैं जिसने हमें ये नजरिया दिया।
कार्ल सैगन 1934 से 1996। वो सिर्फ एक खगोल शास्त्री या वैज्ञानिक नहीं थे।
हाँ, वो थे तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, शुक्र और मंगल पर अहम शोध भी किया।
बिल्कुल, और नासा के वो वाइकिंग वॉयेजर जैसे मिशनों में भी उनकी भूमिका थी।
हाँ,
लेकिन उनकी असली पहचान शायद एक बेहतरीन कहानीकार और विज्ञान के दूत के रूप में है।
उनमें कमाल की खूबी थी, वो विज्ञान की सबसे जटिल बातों को भी ऐसी सरल और थोड़ी काव्यात्मक जोशीली भाषा में समझाते थे कि कोई भी इंसान ब्रह्मांड के जादू में खो जाए।
सही कहा, वो सिर्फ तथ्य नहीं परोसते थे, वो विस्मय जगाते थे, जिज्ञासा जगाते थे।
हाँ, वो दिखाते थे कि विज्ञान सिर्फ लैब की चीज नहीं बल्कि दुनिया को देखने का एक नजरिया है।
और यही बात कॉस्मोस को खास बनाती है। ये किताब उनके जीवन भर के जुनून का नतीजा है, विज्ञान की खोज के रोमांच को हर किसी तक पहुंचाना।
उनका मानना था कि विज्ञान कुछ चुनिंदा लोगों की बपौती नहीं है।
बिल्कुल नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की साझी विरासत है और कॉस्मोस इसी विरासत को खोलने की एक तरह से कुंजी है।
तो आखिर कॉस्मोस है क्या? इसे आप अंतरिक्ष और समय के महासागर में एक यात्रा कह सकते हैं।
हाँ, एक शानदार यात्रा। सैगन हमें लगभग 14 अरब साल पीछे ले जाते हैं, बिग बैंग के मुहाने से लेकर भविष्य की अनिश्चितताओं तक।
और इस यात्रा के लिए उनका वाहन है कल्पना का अंतरिक्ष यान, स्पेसशिप ऑफ द इमेजिनेशन।
हाँ, और इस यान पर सवार होने के लिए हमें किसी रॉकेट साइंस की डिग्री की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी जिज्ञासा चाहिए।
अच्छा,
सैगन भौतिकी, जीव विज्ञान, इतिहास, दर्शन सबको एक साथ बुनते हुए दिखाते हैं कि कैसे ब्रह्मांड की कहानी और हमारी कहानी एक ही है।
तो किताब का केंद्रीय विचार शायद यही है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि उसी का हिस्सा हैं।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है वो मशहूर और हाँ बेहद काव्यात्मक विचार कि हम तारों की धूल से बने हैं। वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ।
इसका मतलब क्या है?
हमारे शरीर में मौजूद कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, ये सारे तत्व।
हाँ, ये सब तत्व जो जीवन के लिए जरूरी है, ये करोड़ों साल पहले मरने वाले तारों के उनके कोर में, उनके दिल में बने थे।
हाँ,
तो हम सचमुच में सितारों की संतान है।
ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
है ना? लेकिन ये किताब सिर्फ ब्रह्मांड की विशालता और सुंदरता का बखान नहीं करती, ये हमें हमारी जिम्मेदारियों का भी एहसास कराती है।
हाँ, खासकर वो परमाणु युद्ध और पर्यावरण विनाश जैसे खतरे जो हमारे अपने बनाए हुए हैं।
सही, ये पूछती है कि इस अनंत ब्रह्मांड में अपने इस नन्हे से घर को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं।
तो चलिए अब कल्पना के अंतरिक्ष यान पर सवार होकर कुछ मुख्य पड़ावों पर रुकते हैं। हाँ, पूरी किताब के 13 अध्याय तो नहीं खंगाल सकते, लेकिन कुछ खास विचारों को छूते हैं।
सबसे पहले ब्रह्मांड का पैमाना और उसमें हमारी हैसियत।
इसके लिए सैगन एक जबरदस्त चीज इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मिक कैलेंडर। सोचिए अगर ब्रह्मांड के 13.8 अरब साल को एक कैलेंडर साल में समेट दें।
अच्छा,
1 जनवरी को बिग बैंग हुआ, हमारी आकाश गंगा मिल्की वे वो मई में बनी, हमारा सूरज और पृथ्वी सितंबर की शुरुआत में,
और पृथ्वी पर जीवन भी लगभग तभी पनपा।
हाँ, करीब करीब तभी।
और इंसान, हम इस कैलेंडर में कहाँ हैं?
हम आते हैं 31 दिसंबर की रात करीब 10:30 बजे।
10:30 बजे साल के बिल्कुल अंत में।
हाँ, और हमारा पूरा लिखित इतिहास वो तो साल के आखिरी मिनट के आखिरी 10 सेकंड में सिमट जाता है।
बाप रे, ये सिर्फ एक तथ्य नहीं, यह हमारे अहंकार पर एक करारा तमाचा है,
है ना? हमारी सारी लड़ाइयाँ, सारी चिंताएं इस पैमाने पर कितनी बेमानी लगती हैं।
बिल्कुल, यह हमें विनम्र बनाता है।
हाँ, और इसी विनम्रता के साथ जब हम इंसान की बुद्धि की ताकत देखते हैं, जैसे प्राचीन यूनान के एरिस्टोटल ने किया।
हाँ, उन्होंने मुंह पृथ्वी का घेरा नापा था ना, बिना शहर से निकले।
बिल्कुल, सिर्फ परछाइयों के कोण नापकर और थोड़ी सी ज्यामिति लगाकर पृथ्वी का घेरा लगभग सटीक नाप लिया। ये दिखाता है कि अवलोकन और तर्क से हम कितने बड़े रहस्य खोल सकते हैं।
और ये हमें उस दूसरे बड़े विचार की ओर ले जाता है, हमारा ब्रह्मांड से गहरा जुड़ाव।
हाँ, वो स्टार स्टफ वाली बात।
ये कैसे संभव हुआ? मतलब ये तत्व बने कैसे?
ये सितारों के अंदर होने वाले परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन से हुआ। वो प्रक्रिया जिसमें तारे अत्यधिक दबाव और गर्मी में हाइड्रोजन जैसे हल्के तत्वों को जोड़कर कार्बन, ऑक्सीजन, लोहे जैसे भारी तत्व बनाते हैं।
अच्छा।
और जब ये विशाल तारे अपनी जिंदगी के अंत में एक सुपरनोवा धमाके में फटते हैं, तो ये बनाए हुए तत्व पूरी आकाशगंगा में फैल जाते हैं।
और उन्हीं तत्वों से फिर नए तारे, नए ग्रह।
और हाँ, हम जैसे जीव भी बनते हैं। क्या ये सोचना अद्भुत नहीं कि हमारे शरीर का हर परमाणु कभी किसी तारे का हिस्सा था?
सच में अद्भुत है। ये जुड़ाव सिर्फ भौतिक नहीं, शायद रासायनिक भी है। आपने मिलर यूरे प्रयोग का जिक्र किया था?
हाँ, सैगन उसका जिक्र करते हैं। उस प्रयोग ने दिखाया कि शुरुआती पृथ्वी जैसे माहौल में बिजली कड़कने जैसी ऊर्जा से जीवन के लिए जरूरी अमीनो एसिड बन सकते थे।
तो ये इशारा करता है कि जीवन शायद ब्रह्मांड के नियमों का एक स्वाभाविक नतीजा हो सकता है, कोई अनोखा चमत्कार नहीं।
हाँ, ये एक संभावना है। अब सवाल उठता है कि हमने ये सब जाना कैसे?
यहीं पर विज्ञान की भूमिका आती है ना?
बिल्कुल, सैगन हमें दिखाते हैं कि कैसे इंसान ने मिथकों और अंधविश्वासों से हटकर तर्क और सबूतों पर आधारित सोच अपनाई।
जैसे वो आयोनिया के दार्शनिक?
हाँ, प्राचीन आयोनिया के दार्शनिकों ने पहली बार कहा कि दुनिया को देवताओं की मर्जी से नहीं बल्कि प्राकृतिक नियमों से समझा जा सकता है। ये एक तरह से विज्ञान की शुरुआत थी।
और फिर योहानिस केपलर की कहानी है।
हाँ, केपलर की कहानी बहुत दिलचस्प है। वो मानते थे कि ग्रहों को एकदम गोल कक्षाओं में घूमना चाहिए, एक तरह की दैवीय पूर्णता।
लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे थे।
सही, जब उन्होंने सटीक आंकड़ों का अध्ययन किया तो पाया कि कक्षाएं अंडाकार हैं, इलिप्टिकल। उन्हें अपनी पसंदीदा धारणा छोड़नी पड़ी क्योंकि सबूत यही कह रहे थे।
यही तो है विज्ञान की खूबसूरती, सच के लिए अपनी धारणाओं को भी चुनौती देना।
बिल्कुल, और विज्ञान हमें सिर्फ अतीत नहीं दिखाता, भविष्य के लिए चेतावनी भी देता है।
जैसे शुक्र ग्रह का उदाहरण।
हाँ, वीनस। सैगन हमें शुक्र ग्रह की सैर कराते हैं, एक ऐसा ग्रह जहां अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव, मतलब रनवे ग्रीनहाउस इफेक्ट, ने उसे एक भभकती हुई भट्टी बना दिया है।
ये तो हमारे अपने ग्रह पर बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के खतरों की एक सीधी तस्वीर है।
बिल्कुल, एक चेतावनी है। फिर वो हमें मंगल ग्रह पर ले जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसने सदियों से इंसानी कल्पना को हवा दी है।
हाँ, वो नहरों और सभ्यताओं की कहानियाँ।
बिल्कुल, पर्सिवल लोवेल की नहरों की कल्पना से लेकर वाइकिंग लैंडर्स द्वारा जीवन के संकेतों की तलाश तक, ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे कल्पनाओं की जगह ठोस सबूतों को रखता है।
और सच की खोज में कितना धैर्य और बारीकी चाहिए होती है।
सही कहा। और फिर है वॉयजर अंतरिक्षयान,
मानवता के दूत।
हाँ, जिन्होंने बाहरी सौर मंडल के ग्रहों की पहली तस्वीरें भेजी और अब अंतरतारकीय अंतरिक्ष, इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर रहे हैं।
और उन पर वो गोल्डन रिकॉर्ड भी है ना?
हाँ, गोल्डन रिकॉर्ड जिसमें पृथ्वी की ध्वनियां, संगीत और तस्वीरें हैं। ये पूरी मानव जाति की तरफ से ब्रह्मांड को भेजा गया एक संदेश है।
ये हमारी खोज की प्यास और शायद अकेले न होने की उम्मीद का प्रतीक है।
बिल्कुल, इन सभी यात्राओं और खोजों से कुछ गहरे संदेश उभर के आते हैं ना?
हाँ बिल्कुल, अगर हम मुख्य बातों को समेटें तो पहला है कॉस्मिक दृष्टिकोण और विनम्रता करता है।
जैसे मैं सोच रही थी ट्रैफिक जैम में फंसे होने पर, सोचना कि मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से कोने में, एक धूल के कण जैसे ग्रह पर धातु के डब्बों में बैठकर हॉर्न बजाना कितना अजीब है, शायद इससे थोड़ी शांति मिले।
अच्छा उदाहरण है। दूसरा संदेश है अंतर संबद्धता। हम तारों की धूल हैं।
हाँ,
हम हवा, पानी, पेड़ पौधे, जानवर सब एक ही ब्रह्मांडीय रसायन शास्त्र से बने हैं। ये एहसास हमें प्रकृति और एक दूसरे से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कराता है।
ये सोचना कि हवा में सांस लेते हुए हम वही ऑक्सीजन ले रहे हैं जो कभी किसी तारे में बनी थी, ये वाकई हमें हर चीज का हिस्सा होने का एहसास दिलाता है।
तीसरा, विज्ञान की शक्ति, अंधेरे में एक मोमबत्ती। सेगेन जोर देते हैं कि सवाल पूछना सबूत मांगना और अपनी गलतियों से सीखना, यही वैज्ञानिक तरीका हमें अज्ञानता और धोखे से बचाता है।
ये दुनिया को समझने का सबसे भरोसेमंद औजार है।
हाँ,
खासकर आज के फेक न्यूज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जमाने में ये रवैया अपनाना बहुत जरूरी है। किसी भी दावे पर आंख मूंद कर यकीन करने से पहले पूछना, इसका सबूत क्या है।
बिल्कुल। और चौथा, मानवीय जिम्मेदारी, एक नाजुक दुनिया के संरक्षक।
हाँ, वो फीका नीला बिंदु, पेल ब्लू डॉट वाली तस्वीर।
सही, जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी की वो मशहूर तस्वीर देखते हैं तो एहसास होता है कि ये ब्रह्मांड में कितना दुर्लभ और अनमोल है। इसकी रक्षा करना सिर्फ सरकारों का नहीं, हम सबका फर्ज है।
ये किताब सिर्फ विचारों से ही नहीं बल्कि कुछ बेहद यादगार पंक्तियों से भी भरी है।
हाँ, कुछ ऐसी पंक्तियां जो हमेशा साथ रह जाती हैं।
जैसे कौन सी?
जैसे ये, ब्रह्मांड हमारे भीतर है, हम तारों की सामग्री से बने हैं, हम ब्रह्मांड के लिए खुद को जानने का एक तरीका है।
ये कितनी गहरी बात है कि हमारे जरिए ही ब्रह्मांड अपनी चेतना पा रहा
है ना। एक और जो मुझे बहुत पसंद है, खासकर जब हम एलियन जीवन की खोज सेटी के बारे में सोचते हैं, सबूत का अभाव अभाव का सबूत नहीं है।
एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस।
हाँ, सिर्फ इसलिए कि हमें कुछ मिला नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। ये खुले दिमाग और वैज्ञानिक जिज्ञासा को दिखाता है।
और ये पंक्ति तो खोज की भावना को जगाती है, कहीं कुछ अविश्वसनीय जानने की प्रतीक्षा कर रहा है।
समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल इज वेटिंग टू बी नोन। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और खोजने के लिए हमेशा कुछ नया है। यह विज्ञान के रोमांच को दर्शाता है।
और अंत में ये पंक्ति विज्ञान को इंसानियत से जोड़ती है। हम जैसे छोटे प्राणियों के लिए विशालता केवल प्रेम के माध्यम से सहनीय है।
फॉर स्मॉल क्रीचर्स सच एज वी, द वास्टनेस इज बेरेबल ओनली थ्रू लव। इस ठंडे विशाल ब्रह्मांड में हमारे आपसी रिश्ते, प्यार और करुणा ही हमें मायने और सहारा देते हैं।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इन विचारों को कैसे अपना सकते हैं?
पहला तो वो ही नजरिया बदला, अपने परेशानियों को ब्रह्मांड के स्केल पर रखकर देखें, शायद वो उतनी बड़ी ना लगे। इससे थोड़ी मानसिक शांति और विनम्रता आ सकती है।
हाँ, ये तो है। दूसरा, आलोचनात्मक सोच विकसित करना।
हाँ, सैगन की बकवास का पता लगाने वाली किट, बलोनी डिटेक्शन किट का इस्तेमाल करें। हर दावे पर सवाल उठाएं, सबूत मांगे, तर्क में खामियां पहचाने।
क्या दावा करने वाले का कोई स्वार्थ है? क्या वैकल्पिक व्याख्याएं हैं? ये आदत हमें गुमराह होने से बचाएगी।
जैसे कोई चमत्कारी इलाज का दावा करे या कोई सनसनीखेज खबर आए तो तुरंत शेयर करने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल करना।
हाँ,
सैगन का तरीका अपनाना।
सही।
तीसरा, जिज्ञासा बनाए रखना।
हाँ, सैगन की तरह दुनिया को आश्चर्य की नजरों से देखना, सीखना कभी बंद न करना, चाहे वो विज्ञान हो, इतिहास हो या कला, हमेशा सवाल पूछते रहना। और चौथा, ज्यादा जिम्मेदार नागरिक बनना। फीके नीले बिंदु का विचार हमें याद दिलाता है कि हम सब इसी एक नाव पर सवार हैं।
पर्यावरण की चिंता, शांति की कोशिशें, ये सब वैश्विक मुद्दे हैं जिनमें हम सबकी भागीदारी जरूरी है।
इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे यादगार या चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए शायद स्टार स्टफ वाला विचार सबसे गहरा है। ये कल्पना कि हमारे शरीर के कण कण का संबंध सुदूर अतीत के तारों से है, ये ब्रह्मांड से एक अविश्वसनीय जुड़ाव महसूस कराता है।
हाँ, वो तो है। और वो कॉस्मिक कैलेंडर का पैमाना भी दिमाग घुमा देता है।
बिल्कुल। मेरे लिए शायद वैज्ञानिक पद्धति की सुंदरता और ईमानदारी, कैसे सच की खोज में स्थापित मान्यताओं को भी चुनौती दी जाती है, और साथ ही वो गहरी जिम्मेदारी का एहसास जो कॉस्मिक दृष्टिकोण अपने साथ लाता है।
अपने ग्रह की देखभाल करने की जिम्मेदारी।
हाँ, ये सिर्फ बौद्धिक अभ्यास नहीं, एक नैतिक पुकार है।
तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं जो सैगन के काम से ही निकलता है। अगर हम सच में ब्रह्मांड के लिए खुद को जानने का एक तरीका है, तो क्या ज्ञान की खोज, सीखना और समझना सिर्फ एक विकल्प है, या फिर ये हमारी एक तरह की ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी है? इस पे सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।